sweet Savior. Om Namah Siddhavyah. Om Namah Siddhavyah. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajhayanam. Namo Loe Savasahunam. Jayaidhavalangate Nauriyasayalabhuvanabhavanagano Kevalanana Sariro Ananjano Namo Chando. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ऊपर लिखी गई है, जिसके कर्ता है गुणधर भट्टारक और यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने श्री महावीर स्वामी के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी। पहला अधिकार जो पेज दोष विहत्ति नाम का प्रथम अधिकार है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 63 पर आ गए, 63। एक्चुअली 63 पूरा हुआ है अपना पेज, वहाँ इस प्रकार लिखा है, वहाँ से शुरू करेंगे। ये विशेषार्थ चल रहा था कि हाँ 63 हो चुका था अपना, वहाँ से आगे हम पढ़ेंगे। विषय चल रहा था कि चार आघात या कर्म जो है वो देवत्व के विरोधी नहीं है, घाती कर्म देवत्व के विरोधी है, तो उनका नाश होने पर परमात्मा पनायने देवत्व प्रकट हो जाता है, और जो चार अघाती कर्म है उनके रहते हुए भी उनमें देवत्व में कोई बाधा नहीं आती। उसके लिए उन्होंने बताया था, ये 63 पृष्ठ पर हम देखते हैं थोड़ा, ये 7-8 लाइन के होने के बाद, कि सर्वज्ञता, वीतरागता, निर्दोषता और हितोपदेशता, विशेषार्थ में मिला 8वीं लाइन, विशेषार्थ की 8वीं लाइन, ये देव की विशेषताएं हैं जो घाती कर्मों के अभाव होने पर ही प्रकट होती है। इसलिए अतः अरहंत परमेष्ठी के चारों अघातिया कर्मों का उदय पाने जाने पर भी, अभी चार अघाती कर्म है और उनका उदय भी उनके पाया जाएगा अरिहंतों को, तो उनके देवत्व में कोई बाधा नहीं आती। क्यों नहीं आती? तो कहते गोत्र कर्म के उदय में क्या होता है, पर्याय में उच्च नीचपना प्राप्त होता है। अब अरहंतों के तो उच्च गोत्र का ही उदय है, फिर भी आम तौर पर उच्च और नीच गोत्र के कारण जिसके मोहनीय बाकी है उसी को उसमें सुख दुख की बात होगी, अन्य को तो नहीं। तो कहते हैं यहाँ पर नाम कर्म के उदय से शरीर आदि और गति आदि रूप अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, और गोत्र कर्म के उदय से पर्याय में उच्च नीचपना उत्पन्न होता है, परंतु केवली भगवान को तो ये राग द्वेष के उत्पन्न होने के कारणभूत ऐसे मोहनीय कर्म का पूर्ण अभाव हो चुका है। इसलिए शरीर के कारण, गोत्र के कारण उनमें कोई उसमें सुख दुख होने का सवाल ही नहीं होता है, या राग द्वेष होने का सवाल नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने बताई, आयु कर्म का उदय है तो उसके कारण अवगाहनत्व गुण प्रकट नहीं होता है, और आयु कर्म के निमित्त से अभी वे मनुष्य क्षेत्र में है, इसलिए दुख भी नहीं है क्योंकि मोह नहीं है, और ना ही उनके सिद्ध क्षेत्र में जाकर निवास करने की उत्कंठा भी है। इसलिए आयु कर्म के उदय से जो कुछ अवगाहनत्व नहीं है, फिर भी उन्हें वहां उसके कारण राग द्वेष या सुख दुख नहीं होता। यहाँ तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। इस प्रकार अभी 64 पृष्ठ पर आते हैं। वेदनीय कर्म भी उनके सुख और दुख रूप बाधा का कारण नहीं है। ये सुख को भी बाधा कहा, ये कौन सा इंद्रियजन्य सुख को यहाँ सुख कहा है? हर्ष विषाद जिसको हम कहते हैं, उन्हें तो अनंत सुख है, परंतु वो वेदनीय कर्मजनित जो सुख कहलाता है वो तो बाह्य संयोगों की अपेक्षा कहने में आता है। जहाँ पर मोहनीय विद्यमान हो ऐसे जीवों को वेदनीय के उदय में संयोगों में अनुकूलता प्रतिकूलता भासित होती है और उसमें सुख या दुख हर्ष या विषाद मान लेते हैं। तो यहाँ कहते हैं अरिहंतों के वेदनीय कर्म का उदय है, फिर भी वो उनके सुख या दुख रूप बाधा का कारण नहीं है, क्योंकि वेदनीय कर्म स्वयं सुख और दुख के उत्पन्न करने में असमर्थ है। जब तक उसे चारों घातिया कर्मों की और प्रधानतया मोहनीय कर्म की सहायता नहीं मिलती, तब तक जीव को भूख और प्यास आदि रूप बाधाएं उत्पन्न नहीं होती। आगम में केवली जिनको जो क्षुधा आदि 11 परिषहों का सद्भाव बतलाया है, उसका कारण केवली जिनके वेदनीय कर्म का पाया जाना मात्र है। क्या कहते हैं, एक क्षुधा परिषह बताया है उनके, परंतु हमने 18 दोषों में उनके क्षुधा तृषा आदि दोष नहीं होते हैं ऐसा देखा है। ये कितने टोटल परिषह याद है? 22 परिषह, उसमें से केवलियों को कितने होते हैं? 11 यहाँ लिखा ना, और हमने तत्वार सूत्र में सूत्र भी पढ़ा था एकादश जी ने, यानी 13वें गुणस्थान वाले को भी इतने परिषह है, परंतु ये उपचार से बताए हैं। उन्हें कोई वहां क्षुधा तृषा आदि का वेदन नहीं है, फिर भी वेदनीय कर्म का सद्भाव है, उस अपेक्षा से ये परिषह है, परिषह जय है ऐसा कहने में आता है। देखो थोड़ा हम तत्वार सूत्र के आधार से इसको देखते हैं। प्रश्न ऐसा था कि मोहनीय कर्म के उदय की सहायता के बिना, उसका अभाव है मोहनीय कर्म का, और फिर भी भगवान को जो क्षुधा वगैरह वेदना नहीं होती है तो उनको क्षुधा परिषह क्यों कहा है? 11 परिषह जो बताए हैं वो ऐसे क्यों कहे हैं? देखो उसमें से कौन से नहीं है उसको हम पहले देखे थे। देखो क्योंकि हमको कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन से परिषह है उसको पहले देखते हैं। अभी विषय निकला ही है तो टोटल कितने परिषह है उसकी बात हम करेंगे। 22 परिषह है, क्षुधा तृषा शीत उष्ण दंशमन मौशक अरति स्त्री अच्छा मैं यहाँ पढ़ के बताती हूँ आपको। देखो क्षुधा तृषा शीत उष्ण दंशमशक चर्या शय्या वध आक्रोश रोग तृणस्पर्श मल प्रज्ञा और अज्ञान, यहाँ अलग टाइप से इसका तत्वार सूत्र में क्यों कौन से गुणस्थान तक कौन से होते हैं उसकी अपेक्षा से यहाँ डिफ्रेंशिएट किया है। अब जो अन्य जो है वो नग्नता अरति यानी संयम में अप्रीति स्त्री अवलोकन स्पर्श आसन को ही निषद्या कहते हैं, दुर्वचन को आक्रोश कहते हैं, याचना सत्कार पुरस्कार और अदर्शन, ये जो 8 है ये मोह कर्मजनित परिषह है। अब जो केवली को जो 11 कहे हैं यानी जो 11वें 12वें वाले को तो प्रज्ञा अज्ञान लिए वो भी केवली के नहीं हो गए, हाँ क्योंकि उनके तो क्षायिक ज्ञान है इसलिए वो भी वहां पर नहीं रहेंगे। और अलाभ वाला भी नहीं रहेगा। अब यहाँ यानी 10वें 11वें और 12वें में 14 परिषह बताए हैं और केवलियों के 11 परिषह बताए हैं, तो प्रज्ञा अज्ञान और वो अलाभ वो परिषह वहां नहीं रहेंगे। अब प्रश्न ऐसा है, देखो कि मोह कर्म जनित, मैं गुजराती में पढ़ूंगी, मोह कर्म जनित वेदना न होवा छता द्रव्य कर्मनु विद्यमान पणु बतावा माटे। कौन सा द्रव्य कर्म अभी यहाँ वेदनीय है, उसकी सत्ता है, उसका उदय भी है, ये बताने के लिए त्या उपचार थी परिशह कहवामा आया छे। केवली ने जो परिशह कहने में आए हैं वो कर्मों की उपस्थिति बताने के लिए बताया है। जेम समस्त ज्ञानावरण नष्ट थवाथी युगपत समस्त वस्तुओं ने जानवा वाला केवल ज्ञान ना प्रभाव थी तेमने चिंता निरोध रूप ध्यान नो असंभव होवा छता। कल हमने इसकी बात की थी ना, केवलियों को चिंता निरोध वाला ध्यान नहीं होता। चिंता निरोध यानी किसी एक पदार्थ पर उपयोग केंद्रित करना, अन्य पदार्थों से हटाकर किसी एक में लक्ष्य केंद्रित करना, ऐसा ध्यान केवलियों को नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो सभी ये तो उपयोग रूप ही है, जो कुछ सभी पदार्थों को जानते एक साथ एट ए टाइम युगपत, तो कहीं से हटाना नहीं और कहीं लगाना नहीं है, ऐसा ध्यान उनके नहीं होता। फिर भी ध्यान नु फल, ध्यान का फल क्या होता है, ध्यान करने से क्या होता है, तो निर्जरा होती है। जे शेष कर्मोनी निर्जरा तेनु विद्यमानपनु बतावा माटे त्या उपचारती ध्यान जनाव्यु छे। जैसे ध्यान भी उपचार से कहे है, ऐसे यहाँ जो परिशह है केवलियों के वो भी उपचार से बताए हैं। देखो जिन्होंने 11 परिशहो छे ए व्यवहार नयनु कथन छे, तेनो अर्थ एवो छे के जिन अनंत पुरुषार्थमय छे परिशहना दुखमय नथी। फिर भी निमित्त रूप जो परद्रव्य पहले थे और अभी विद्यमान है वेदनीय, उसकी उपस्थिति बताने के लिए वहां पर वो परिशह ऐसा कथन है, परंतु वो परिशह से कोई दुख होता है या दुख रूपा होता है या उससे हटकर अपने में लीन है, ये बात वहां है ही नहीं है, और ना ही वहां कोई उपसर्ग भी पाए जाते हैं। अब हम यहां पढ़ेंगे 64 पृष्ठ पर जय धवला में। चौथी लाइन आगम में केवली जिनके जो क्षुधा आदि 11 परिशहों का सद्भाव बतलाया है, उसका कारण केवली जिनके वेदनीय कर्म का पाया जाना मात्र है। ये बात है ना, अभी हमने उसमें से भी पढ़े, पर वेदनीय कर्म मोहनीय के बिना स्वयं कार्य करने में असमर्थ है, इसलिए वहां 11 परिशह उपचार से ही समझना चाहिए, वास्तव में नहीं। वेदनीय को मोहनीय के पहले कहने का भी यही कारण है। इस प्रकार ये वेदनीय को मोहनीय के पहले कहते हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय फिर मोहनीय और फिर बाकी को बताते और अंतराय को लास्ट में बताते, इस ऑर्डर से भी बताने की पद्धति है। हाँ ऐसे ही बताया, वहां तो कारण अलग है। ये जो हाँ यानी जो कर्म आते हैं ना, एक समय में समय प्रबद्ध जो लिया जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रमाण में होता है, तो उस अपेक्षा से भी वो नंबरिंग किया है, या जीव के गुणों के साथ भी डायरेक्ट जो समय, ये सुख दुख में निमित्त है वेदनीय, इसलिए उसको पहला नंबर लेते हैं। ज्ञान है, दर्शन है, फिर सुख में, तो इसलिए भी उसका वेदनीय का पहला नंबर लेते हैं, या दूसरी अपेक्षा कितने परमाणु किसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसकी अपेक्षा से भी वो नंबरिंग आता है। इस प्रकार चारों अघातिया कर्मों के उदय के रहते हुए भी वे देवत्व के बाधक नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है। एक कल का विषय पढ़ना, आपने शायद पढ़ा होगा, केवल ज्ञान की सिद्धि बहुत विस्तार से की है उसमें। अब 53 नंबर वाला, यदि केवली जिन भोजन करते हैं तो संसारी जीवों के समान वे बल आयु स्वादिष्ट भोजन शरीर की वृद्धि तेज और सुख के लिए ही भोजन करते हैं, ऐसा मानना पड़ता है, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा मानने पर वे मोहयुक्त हो जाएंगे और इसलिए उनके केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। क्या कहते हैं, हम भोजन क्यों करते हैं? तो बल बढ़ाने के लिए, आयु कायम रहे इसलिए। अच्छा, तो बल, आयु, स्वादिष्ट भोजन, शरीर की वृद्धि, तेज और सुख के लिए, जैसे संसारी जीव भोजन करते हैं वैसे उन्हें भी मानना पड़ेगा। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर वे मोह युक्त हो जाएंगे, क्योंकि शरीर बने रहे इसलिए करते हैं, तो मोह है ना, उसे शरीर के प्रति लगाव है इसलिए करते हैं, और इसलिए उनके केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि वितराग हुए बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। पहले वितरागता आती है और बाद में सर्वज्ञता। यदि कहा जाए कि जबकि जिन देव को केवल ज्ञान नहीं होता है, तो केवल ज्ञान से रहित जीवों के वचन ही आगम हो जावे, सो भी कहना ठीक नहीं है। इन्हें जिनके केवल ज्ञान नहीं है, ऐसे केवल ज्ञान से रहित जीवों के वचन को आगम कहेंगे या वही आगम होगा, ये बात भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर राग, द्वेष और मोह से कलंकित उनमें विष्णु, महादेव और ब्रह्मा की तरह सत्यता का अभाव हो जाएगा। क्योंकि ये तो अन्य मतियों की कल्पना ही है ना, और ये सारे जो उनके ग्रंथ आदि जो है वो तो ऋषियों ने बनाए हुए हैं, तो कोई सर्वज्ञ वितरागी तो है ही नहीं, ये तो हम तो पता है। और उन्होंने जो भगवान की कोई कल्पना करके विष्णु, महादेव और ब्रह्मा आदि की कल्पनाएं बना ली है, और उन्होंने ये बताया करके शास्त्रों की भी रचना की, वो सब झूठ है। क्यों? राग, द्वेष और मोह से कलंकित है। ऐसे जो विष्णु है, महादेव है, ब्रह्मा है, आपको तो हमें मालूम भी नहीं, हमें तो केवल उनके नाम से ही परिचित है। उनकी क्या टोटल मान्यता है, उन्होंने उसका स्वरूप कैसा है, यदि उनके भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगता कि ये ऐसी विपरीतता कैसे मान सकते हैं। ब्रह्मा आदि का जो स्वरूप कहते हैं, उसके चार मुंह होते हैं और इधर ये करता है आदि आदि, ये अपना एक धर्म परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है, किसने लिखा, माणिक्यनंदी आचार्य ने लिखा, तो उनमें ऐसे मूर्खों की कथाएं हैं सारे। कौन सबसे ज्यादा मूर्ख है, तो उसमें ये सारे एक एक भगवान की बातें उसमें ली है, बहुत विस्तार से चर्चा है उसमें, तो सत्यता का अभाव हो जाएगा। और सत्यता का अभाव होने से उनके वचन आगम नहीं कहे जा सकेंगे, तथा इस प्रकार आगम का अभाव हो जाने पर रत्नत्रय की प्रवृत्ति नहीं बन सकेगी, जिससे तीर्थ का विच्छेद ही हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? यदि आगम यानी आगम, भगवान ने जो बताई है बातें, केवल ज्ञान के निमित्त से उनके जो वचन निकलते हैं और उसके अनुसार जो द्वादशांग की रचना हुई है, परंपरा से वो आई है प्रवाह रूप से, इसलिए उसको आगम कहा। ये परमार्थ वचनिका में जो बनारसी दास जी ने जो आगम कहा है, वो आगम क्या चला रहा है, तो विकार अनादि से चल रहा है, और कुछ कर्म जो है, कर्म का उदय, वो भी बंदर उदय अनादि से चला रहा है, इसलिए उसको आगम कहा। उसकी बात यहाँ नहीं है, ये आगम वचन की बात चल रही है। तो भगवान के वचन जो है, परंपरा से जो आज तक चले आए हैं, उसको यहाँ आगम कहा है। और आगम के द्वारा हमें सत्य उपदेश की प्राप्ति होती है। तीर्थ है ने उपदेश, तीर्थ है ने तीर्थ क्षेत्र, वो नहीं समझना। हाँ, तो हमें तो उसकी महिमा आती है ना, हमने तीर्थ क्षेत्र पर जाके दर्शन कराए, परंतु तीर्थ है ने उपदेश सुनने की तो किसी को पड़ी ही नहीं है। यानी सच्चा तीर्थ तो वही है, क्योंकि उसका उपदेश, ये उपदेश सुनकर ही हम अपने स्वरूप को पहचान कर, यानी अपने में मोक्ष मार्ग प्रकट कर, जैसे वो भगवान बने हैं वैसे हम खुद बन सकते हैं। परंतु बचपन से कहो या ऐसे ही रूढ़िगत ऐसे ही चला आ रहा है कि जो भगवान के दर्शन करो और साल भर में एक दो बार यात्रा करके तीर्थ क्षेत्रों को जाके आओ। तो ये सच्चा तीर्थ है। कौन सा? आगम का अभाव हो जाने पर रत्नत्रय की प्रवृत्ति नहीं बन सकेगी, क्योंकि ज्ञानी के उपदेश के बिना, भगवान के द्वारा जो उपदेश चला आ रहा है, उस उपदेश को सुने बिना, उस उपदेश को समझे बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं बनेगी, और तीर्थ का अभाव हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा, नहीं उसका अभाव हो जाएगा। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि निर्बाध बोध के द्वारा ज्ञात तीर्थ की उपलब्धि बराबर होती है। क्या कहते हैं? निर्बाध बोध, बाध यानी बाधा और बोध यानी ज्ञान, समझ में आना। तो निर्बाध बोध के द्वारा ज्ञात यानी जो जाने हुए तीर्थ की उपलब्धि यानी उपदेश की प्राप्ति बराबर होती है। यानी हमें आगम द्वारा जो उपदेश चला आ रहा है उसकी प्राप्ति हमें अभी आज भी उपलब्ध है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि घाती कर्मों की अपेक्षा के बिना वेदनीय कर्म अपने फल को नहीं देता। इसलिए पसीना, मल, रज अर्थात बाह्य कारणों से शरीर पर चढ़ा हुआ मैल, रक्त नयन और कटाक्ष रूप बाणों का छोड़ना आदि शरीरगत समस्त दोषों से रहित समचतुरस्र संस्थान, ये तीर्थंकर की अपेक्षा बात है ना। सामान्य केवली को तो छह संस्थानों में से कोई संस्थान की बात कर रही, सहनन की नहीं। हाँ, लक्ष्मीबेन ऐसे देखने लगे है। हाँ, तो तीर्थंकरों के तो समचतुरस्र संस्थान ही होगा। तो समचतुरस्र संस्थान, वज्र ऋषभ नाराच सहनन, ये तो हर चरम शरीरी के वज्र ऋषभ नाराच सहनन ही पाया जाएगा। पर ऐसा उल्टा नहीं लगाना, जिसको जिसको वज्र ऋषभ नाराच सहनन है वो मोक्ष जाएगा, ये बात नहीं है। क्योंकि सातवें नरक वाले जाने वाले जीव को भी वो होता है। उतनी क्या, भोग भूमि वालों को भी यही सहनन होता है, और वे सारे तो देव में जाते हैं। दिव्य गंध, ये कैसा गंध, किस चीज का गंध? शरीर का, उसके शरीरों का वर्णन, शरीर का वर्णन चल रहा है ना। तो दिव्य गंध, योग्य प्रमाण रूप से स्थित नख और रोम, ना ही बढ़े नख केश, ऐसा आता है ना, केवल ज्ञान होने पर नख और केश नहीं बढ़ते हैं। आभरणों से रहितपना, हम तो ऐसे मोही हो जाते हैं कि भगवान को भी आभरण से युक्त कर देते हैं, क्योंकि हमें गहनों की चाह है ना, चाव है, तो भगवान बड़े हैं तो उनको भी गहने पहना देते हैं। दैदीप्यमान और सौम्य मुख, वस्त्र से रहितपना, मनोहर आयुध से रहितपना, देखो ना वस्त्र है, ना शस्त्र है, ना आभूषण है, और अत्यंत निर्भयपना आदि गुणों से युक्त दिव्य देह को धारण करने वाले, रक्त नहीं, क्रोध का चिन्ह है ना वो, पहले क्या बताया, यानी शरीर के जो बाह्य दोष है वो तो है ही नहीं है। जैसे पहले भी हमने देखा कि भ्रुकुटी चढ़ाना आदि जो ये क्रोध के जो साइंस है, क्योंकि अत्यंत सौम्य मुद्रा है तो ये बातें नहीं होगी। और ये कटाक्ष रूप बाणों का छोड़ना, यानी वो तो काम का साइन है, चिन्ह है। हम यहां आए थे 65 पेज पर, चौथी लाइन में अभी चलेंगे। राग द्वेष कषाय और इंद्रियों से तथा देव मनुष्य तिर्यंच और अचेतन कृत चार प्रकार के उपसर्ग और 22 परिशह आदि समस्त दोषों से रहित, क्या कहते हैं, कषायों से रहित है, इंद्रियों से रहित है, उपसर्ग से रहित है। उपसर्ग यहाँ चार प्रकार के बताए, देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंचकृत और अचेतनकृत, यानी नैसर्गिक जो कोई आपत्तियां वगैरह होती है, तूफान आना या आदि जो कोई, उससे रहित होते। केवल ज्ञान होने पर इसमें से कोई भी उपसर्ग नहीं होता। हम देखते हैं मुनियों के तो ऐसे उपसर्ग हो सकते हैं, परंतु केवल ज्ञानी के नहीं होते। तिर्यंचकृत, देव मनुष्य और तिर्यंचकृत वहां लिखे ना, हाँ अभी हमने उसी में से पढ़ा, चार प्रकार के उपसर्ग, चौथी लाइन। और 22 परिश, 22 परिशों में से कोई परिश नहीं होते हैं, जो हमने अभी 11 देखे हैं वो उपचार से बताए हैं। क्यों? क्योंकि वेदनीय कर्म का उदय बताने के लिए, बस इतना ही। परंतु वहां उनके कोई क्षुधा लगती है, भूख लगती है, ऐसी कोई बात वहां है ही नहीं। यानी आदि समस्त दोषों से रहित, एक योजन के भीतर दूर या समीप बैठे हुए नाना देश संबंधी 18 महाभाषा और लघु भाषाओं से युक्त ऐसे देव, तिर्यंच और मनुष्यों की अपनी अपनी भाषा रूप से परिणत, ये पूरे अभी चक्र इसकी दिव्य ध्वनि की बात यहाँ बता रहे हैं। पहले में पहले क्या कहते, एक योजन के भीतर बैठे हुए, भले वो सामने नजदीक बैठे हो या दूर बैठे। दूसरी बात क्या करें, नाना देश संबंधी वहां लोग आए, नाना देश ही क्या, नाना गति के भी आए ना, देव गति के आए, तिर्यंच आए, मनुष्य आए, और मनुष्यों में भी कितने होंगे वहां पर, सभी अलग अलग देशों के। तो कहते हैं 18 महाभाषा, और हम पूजा में देखें कितने लघु भाषा, कितनी, 700। ऐसे देव, तिर्यंच और मनुष्यों की अपनी अपनी भाषा रूप से परिणत, ये दिव्य ध्वनि तो निरक्षरी होती है, परंतु वो जो जो जीव सुनते हैं उनको अपनी अपनी भाषा में वो सुनाई देता है। तो ऐसे अपनी अपनी भाषा में परिणत होने की जो कोई वहां जो कुछ बीज पद रूप से वो ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि ऐसी अनुपम दिव्य ऐसी है कि वो अलग अलग इतनी भाषाओं का उसमें से ज्ञान निकलता है जीवों को। आप कहेंगे कि हाँ प्रत्येक अपनी अपनी भाषा में समझता है, नहीं, वहां के जो गणधर है ना वो इन सभी भाषाओं को एक साथ जान भी लेते उसमें से। ये पहले हमने धवला में पढ़ा था इसको, वहां तो उनकी ऐसी रिद्धि है ना कि पूरा चक्रवर्ती की सेना भी और कोई तीरंच भी, जितने कोई आवाज करते वो सबको एक साथ भिन्न भिन्न जाने, सबकी भाषाएं, ये उनकी ज्ञान की ऐसी रिद्धि प्रकट होती। तो यहाँ तो सभी जीव तो अपनी अपनी भाषाओं में जानेंगे, परंतु सभी भाषाओं को एक साथ जानने वाले भी गणधर आदि वहां है। तो अपनी अपनी भाषा रूप से परिणत तथा न्यूनता और अधिकता से रहित, मधुर, मनोहर, गंभीर और विशद, ये भाषा का वर्णन कर रहे हैं। मधुर है, हम तो कहते हैं हित मित प्रिय, पर मित ने ऐसा मित नहीं कि कुछ समझ में ही नहीं आवे। क्या कहते हैं, न्यूनता भी नहीं और अधिकता भी नहीं है। मनोहर, गंभीर और विशद, इन भाषाओं से युक्त, भाषा के अतिशयों से युक्त, विशद यानी अत्यंत स्पष्ट, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क, सौधर्म ईशान आदि कल्पवासी, अभी वहां कौन कौन आते हैं समोचरण में तो उसका वर्णन है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, सौधर्म ईशान आदि कल्पवासी, तो कहां तक के कल्पवासी आते हैं? तो कल्पातीत भी आते हैं कि नहीं आते? हाँ, सर्वथ यानी समोचरण में नहीं आते, परंतु अन्यथा भी आते हैं कि नहीं आते? मैंने क्या पूछा, समोचरण में कल्पातीत जीव नहीं आते हैं, तो कल्पातीत जीव कभी भी नहीं आते हैं? तो देवेंद्र भाई कहते नहीं आते, कभी आते नहीं 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 उसकी बात नहीं है ना वो कल्पातीत है ना, नहीं लौकांतिक कहाँ है? अच्छा सॉरी, पांचवे पांचवे के हैं, ब्रह्म के हैं, सॉरी सोरा के, मैंने लोकांतिक की बात मैंने करनी थी मुझे वो कल्पवासी में ही आ गए। हाँ बराबर है, तो कल्पवासी कहाँ तक के कल्पवासी कहलाते हैं? 16 स्वर्ग तक है। हाँ। और ऊपर के कल्पातीत ऐसा क्यों? कल्प का अर्थ क्या है? हाँ हाँ बोलो। हाँ कल्पातीत यानी सभी अहम इंद्र है, और कल्प यानी क्या? कल्पवासी का ना, तो कल्प किसको कहना? नहीं रहने का नहीं है, जहाँ ये कल्पना होती कि एक इंद्र है एक प्रति इंद्र है उसके फिर त्रायस्त्रियंश है, ये जो भेद होते हैं ना 10 प्रकार के या व्यंतरों में भी 8 प्रकार के वगैरह जो भेद है, ऐसे भेद उनमें नहीं है। तो जहाँ ये भेद जहाँ तक भेद पाए जाते हैं 16वें स्वर्ग तक, उनको कल्पवासी कहते हैं। और ऊपर के कल्पातीत, कल्पने भेद नहीं, कल्पने वहां ऐसे जो 10 अलग अलग स्टेजेस की कल्पनाएं होती है उसको कल्पवासी कहते हैं। और ये भवनत्रिक वो अलग, हाँ हाँ वहां होते हैं 16वें स्वर्ग तक। तो कहते हैं यहाँ किस किस को याद किया, देखो ये सभी जीव भवनवासी व्यंतर ज्योतिष का सौधर्म आदि कल्पवासी। अब मनुष्यों में चक्रवर्ती बलदेव नारायण विद्याधर, ये विद्याधरों को मोक्ष हो सकता है? हाँ हाँ वो भी दीक्षा लेने से, हाँ हनुमान थे ना, हाँ मोक्ष गए, हाँ विद्याधरों को भी होता है। हाँ प्रतिनारायण को यहाँ नहीं, क्योंकि ये विशेष पुरुष बताने ना, विद्याधर राजा अधिराजा मंडलिक महामंडलिक। अभी महावीर स्वामी की बात चल रही है इसलिए यहाँ इंद्रभूति अग्निभूति वायुभूति सिंह व्याल आदि देव मनुष्य मुनि और तिर्यंचों के इंद्रों से पूजा के अतिशय को प्राप्त हुए। देखो इंद्र कौन कौन लिए, देखो पहले पहले भवनवासी के इंद्र हो गए, ज्योतिषियों के इंद्र हो गए, जो व्यंतरों के इंद्र है, इंद्र और प्रतिंद्र वो भी, और सौधर्म ईशान आदि कल्पवासियों के भी वहां इंद्र हो गए। 16 स्वर्गों के इंद्र कितने हो गए? इंद्र प्रतिंद्र मिलकर 24 हो गए, परंतु 16 में 16 इंद्र नहीं है, वो 12 इंद्र है। हाँ पहले चार में तो है एक एक, हाँ हाँ बीच में जो है ना, तो उसमें तो जैसे दक्षिण में एक उत्तर में एक इंद्र होते हैं सौधर में ईशान सानत कुमार महेंद्र वगैरह में, वैसे ऊपर दोनों के मिलकर एक एक ही है। तो ये तो देवों के इंद्र, मनुष्यों के इंद्र है चक्रवर्ती, फिर भी ये जो अन्य महापुरुष है उसको भी याद किया। और फिर मुनियों में श्रेष्ठ इंद्रभूति वायुभूति और अग्निभूति, इन तीनों को लिया है। और सिंह और व्याल ये तिर्यंचों में श्रेष्ठ जो है उनको यहाँ याद किया। हाँ चक्रवर्ती एक इंद्र और सिंह एक इंद्र, व्याल नाम का एक प्राणी होता है, आपने शायद अजंता एलोरा में देखे होगे ना, इसे व्याघ जैसा मुंह होता है और पीछे व्याल के व्याल अलग टाइप का होता है, यानी वो तो हिंस्र पशु हिंस्र है ना, एक श्रेष्ठ बलवान पशु कहलाता है व्याल। आदि देव मनुष्य मुनि और तिर्यंचों के इंद्रों से पूजा के अतिशय को प्राप्त हुए, यानी ये सभी जीव उनकी पूजा करते हैं। और ये तो सब अभी तक तो बाह्य विभूति बताई, पहले क्या दोष नहीं है बताए, फिर शरीर कैसा सुंदर है वो बताया, उनकी वाणी कैसी अतिशय है वो बताई उसकी बात, और कौन कौन उनकी पूजा करते वो बात बताई है। अब कहते हैं क्षायिक सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य, अवगाहनत्व, अगुरु लघु, अव्याभाद और सूक्ष्मत्व आदि गुणों से सिद्ध के समान वर्धमान भट्टारक के द्वारा उपदिष्ट होने से द्रव्यागम प्रमाण है। सिद्धों के समान उनको भी ले लिया, कहा भी है भविष्य की अपेक्षा। हाँ, सिद्ध सारी छे न, सिद्ध के समान लिखा उनको। हाँ, महावीर के देखो, इनका कहना है यहाँ एक योजन जो लिमिट बताई है समोसरण की, वो महावीर भगवान की अपेक्षा से बताए, क्योंकि पहले तीर्थंकर में तो 12 योजन था ना। हाँ, कहा भी है, ऊपर की गाथा हम पढ़ेंगे। निसंशय करो वीरो महावीरो जिनोत्तमो, राग दोष भयादि दो धम्म तीर्थ सकारो। ये राग अलग है ना इसका। जिन्होंने धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करके समस्त प्राणियों को निसंशय किया, निसंशय करो यानी निसंशय करने वाले, ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी किया है, जो वीर है, वीरो अर्थात जिन्होंने विशेष रूप से समस्त पदार्थ समूह को प्रत्यक्ष कर लिया है, जो जिनों में श्रेष्ठ है महावीरो तथा नहीं जिनोत्तमो का अर्थ उन्होंने जिनों में श्रेष्ठ लिखा है, जिन यानी केवली, और तीर्थंकरों को जिनवर कहते हैं, क्योंकि अन्य अर्यंतों की अपेक्षा तीर्थंकर का पद विशेष है, इसलिए उनको जिनवर कहते हैं। तथा राग द्वेष और भय से रहित है, राग दोष भयादिदो अतीतो, उससे अतीत हो गए, उससे रहित हो गए, ऐसे भगवान महावीर धर्म तीर्थ के करता है, यानी धर्म का उपदेश देने वाले हैं। धर्म तीर्थ है ना, वो उपदेश है आगम उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ है। कौन सा? हाँ, कारो यानी कारक है, करता है। अब शंका, भगवान महावीर ने धर्म तीर्थ का उपदेश कहाँ पर दिया? अभी थोड़ी ज्योग्राफी भी बताएंगे, हिस्ट्री ने कहाँ पर भी बताया ना, और कब दिया वो भी करेंगे। जब महामंडलिक श्रेणिक राजा अपनी चेलना रानी के साथ सकल पृथ्वी मंडल का उपभोग करता था, तब मगध देश के तिलक के समान राजगृह नगर की नैऋत्य दिशा में स्थित तथा सिद्ध और चारणों के द्वारा सेवित विपुलगिरी पर्वत के ऊपर बारह गणों अर्थात 12 सभाओं से परिवेष्टित भगवान महावीर ने धर्म तीर्थ का कथन किया, यानी उनका समोसरण कहाँ लगा था? तो विपुलाचल पर्वत पर। तो विपुलाचल पर्वत कहाँ पर है? तो कहते हैं राजगृह के नैऋत्य दिशा में है। ये सिद्ध क्यों? सिद्ध चारण, अच्छा सिद्ध और चारण, सिद्ध चारण सेवी है यानी चारण मुनिराज के द्वारा सेवित, क्योंकि चारण जो मुनि है वो तो पर्वतों की गुफा में वगैरह उनके तो आना जाना ऐसा रहता है, तो इसलिए चारणों से सेवित ऐसा लिखा है। सिद्ध चारण ऐसा एक शब्द लिखा है उन्होंने, सिद्ध चारण सेवी है। वहां से तो मोक्ष जाते हैं। हाँ, उसमें भी हो सकता है, क्योंकि वहां से अनेक जीवों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। पर्वत का वर्णन विपुलाचल का कहा भी है। हाँ, ये सब अभी 17 से 19 तक हम पढ़ेंगे। पंचशैलपुरे रम्ये ऊले पौवदुत्तमे नानादुम समायिन्ने सिद्धचारण सेविदे ऋषिगिरीरैन्द्राशायां चतुरस्रोयां दिशि च वैभारः विपुलगिरिर्नैऋत्यामुभौ त्रिकोणौ स्थितौ तत्र धनुषाकारश्चिन्नो वारुणवायव्यसोमदिक्षुततः वृत्ताकृतिरीशाने पाडुः सर्वे कुशाग्रवृताः। ये इसको पंचशैलपुर भी कहते हैं। पांच पर्वत है वहां पर। राजगृह में गए हो कभी? वो अलग है। पंचशैलपुर में अर्थात पांच पहाड़ों से शोभायमान राजगृह नगर के पास स्थित नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त नाना दुम समायने द्रुम यानी वृक्ष सिद्ध तथा चारणों से सेवित तथा लिखा है ना, और सर्व पर्वतों में उत्तम ऐसे अति रमणीक विपुलाचर पर्वत के ऊपर भव्य जनों के लिए भगवान महावीर ने वो वीर हुआ धर्म तीर्थ का प्रतिपादन किया। ऐन्द्र चारण रिद्धि वाले जो मुनिराज है उनको चारण कहते हैं, और वहां से अनेक सिद्धालय में गए इसलिए उसको सिद्ध चारणों से सेवित कहा। ऐन्द्र अर्थात पूर्व दिशा में चौकोर आकार वाला ऋषिगिरी नाम का पर्वत है। दक्षिण दिशा में वैभार और नैऋत्य दिशा में विपुलाचल नाम के पर्वत हैं। ये दोनों पर्वत त्रिकोण आकार वाले हैं। पहला चौकोर वाला लिया, ये त्रिकोण वाले हैं। पश्चिम वायव्य और उत्तर दिशा में धनुष के आकार वाला छिन्न नाम का पर्वत है, और ईशान दिशा में गोलाकार पांडु नाम का पर्वत है। पंचशैल कहा ना, ऋषिगिरी, वैभार, विपुलाचल, छिन्न और पांडु, ये सब पर्वत कुश के अग्रभागों से ढके हुए हैं। अब आगे, किस काल में धर्मतीर्थ का प्रतिपादन किया ऐसा पूछने पर शिष्यों को काल का ज्ञान कराने के लिए आगे काल की प्ररूपणा की जाती है वह इस प्रकार है। कुश ने तृण है ना, गवत, घास। अभी कौन से भाषा में कौन सा शब्द है वो, तो मराठी में घास कहे तो ग्रास होता है, तो ग्रास का अर्थ जो संस्कृत हिंदी में खाना होता है तो अंग्रेजी में गवत होता है। देखो, पहले तो काल की बात पूछी थी शिष्य ने, कब हुआ था, कहां पर दिया था, पूछा था, तो कहां पर के लिए उन्होंने विपुलाचर पर्वत बताया। कब हुआ था तो कहते हैं वही इस प्रकार है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के भेद से काल दो प्रकार का है। ये दो प्रकार है वो पूरा एक जो काल चक्र बताया जाता है जिसको कल्प काल कहते हैं। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी मिलकर कल्प काल होता है जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। तो अभी उसमें दो भेद है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। उत यानी ऊपर चढ़ना और अव यानी नीचे की ओर आना, दो प्रकार का है। अब वो क्या बढ़ता है उसमें, तो कहते जिस काल में बल, आयु, शरीर की ऊंचाई का उत्सर्पण अर्थात वृद्धि होती है वह उत्सर्पिणी काल है, और जिस काल में बल, आयु और शरीर की ऊंचाई की हानि होती है वह अवसर्पिणी काल है। ये बुद्धि की भी हानि होती होगी कि नहीं होती होगी? क्यों नहीं? शोभशम कम होगा ना, क्या होगा? देखो, अगर ये रूल हम सब जगह लगाएंगे तो चौथे काल के आदि में भी तीर्थंकर हुए और अंत में भी हुए, या अगर उत्सर्पिणी लगाएंगे तो, यानी केवल ज्ञान तो सभी कालों में है। हाँ, तो मैंने इसीलिए पूछा था, ज्ञान में ऐसी हिनादिकता नहीं कह सकते हम। ये जो आप अभी जो अभिक्षोभशम की बात कर रहे हैं, तो ये अकेले पांचवें काल की बात कर रहे हैं आप, समझ में है ना? हाँ, छह में आता है पांचवा, और छह में पहला दूसरा तीसरा भी आता है, परंतु ये इसीलिए इसके हम रूल नहीं बना सकते। जैसे शरीर की अपेक्षा उसमें बिल्कुल लगातार अवसर पर हानि देखी जाती है, जैसे पहला जो है उत्तम भोग भूमि वाला, तो वहां से लेकर छठे काल तक ये बल, आयु और शरीर की ऊंचाई, ये सभी क्रम से हानि को प्राप्त होते हैं, और उत्सर्पिणी क्रम से वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उसका तो नियम बताया, किसमें हानि है? बल में, आयु में और शरीर की ऊंचाई में, उसमें हानि वृद्धि होगी। इनमें से प्रत्येक काल सुषमा सुषमा आदि के भेद से छह प्रकार का है। प्रत्येक काल ने उत्सर्पिणी में भी और अवसर्पिणी में भी, सुषमा सुषमा है, सुषमा है, सुषमा दुखमा है, फिर दुखमा सुषमा, दुखमा और दुखमा दुखमा, जो सुषमा सुषमा को हम अवसर्पिणी के अपेक्षा पहला काल कहते हैं, जो उत्सर्पिणी के अपेक्षा उसको छठा नंबर दिया जाएगा। नाम लेते तो कोई सवाल ही नहीं, जो जहां पर स्थित है उनमें से। इस देखो, ये सारा भूगोल की भी बात आती है, ये भी बात आती नहीं। आज सुबह फोन आया था, हाँ अरविंद भाई, ये अमेरिका से अतुल बाकलीवाल, ये उन्होंने तो बताया, भूगोल की जो वीसीडी बनी है उसका हम इतना यूटिलाइज करते हैं, वहां तो यंगस्टर्स का ग्रुप है, यंगस्टर्स है ना, अभी मैरिड कपल्स जो है, तो कहते उनका तो एक या डेढ़ घंटे का ऐसा कुछ वो सुनते हैं, वीसीडी लगाते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, तो रात को तो 5 घंटे तक वो चला, तो आखिर तक इतनी देरी हो गई कि रुकना पड़ा, यानी जबरदस्ती से रोकना पड़ा। इतने लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसमें से इतने डिस्कशंस कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। बोलो बोलो, यानी भले हमें ऐसा लगता रहे हम क्या करें, इतने शिविर ले रहे हैं क्या करें, तो अभी से वो उत्सुक है, वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका के शिविर के लिए और पुस्तकों के लिए। यहाँ क्या कहते हैं, ये काल की बात हो रही है। उनमें से इस भरत क्षेत्र संबंधी अवसर्पिणी काल के चौथे दुष्म सुषमा काल में, ये दुखमा कहो या दुष्मा कहो एक ही बात है, श लगाते या ख लगाते, तो दुष्म सुषमा काल में 9 दिन और 6 महीना अधिक 33 वर्ष अवशिष्ट रहने पर धर्म तीर्थ की उत्पत्ति हुई, कहा भी है ऊपर। इमिसेवसपीनीये चौथ कालस्य पश्चिमे भाये चौतीसवासावशेषे किंचि विशेषूण कालमि। इस अवसर्पिणी काल के क्या हुआ? हाँ, वो तो पहले भी आता है, वो ती लिखा है ना उसमें। हाँ, इस अवसर्पिणी काल के दुष्म सुषमा नामक चौथे काल के पिछले भाग में, पिछला भाग है ना, एंड वाला, अंतिम भाग, कुछ कम 34 वर्ष बाकी रहने पर धर्म तीर्थ की उत्पत्ति हुई। आगे इसी को स्पष्ट करते हैं। चौथे काल में 15 दिन और 8 महीना अधिक 75 वर्ष बाकी रहने पर आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन 72 वर्ष की आयु से युक्त, अभी ये गर्भ में आने वाले की बात करेंगे, आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन आए ना, युक्त तथा मति श्रुत और अवधि ज्ञान के धारक भगवान महावीर पुष्पोत्तर विमान से गर्भ में अवतीर्ण हुए। उन 72 वर्षों में 30 वर्ष कुमार काल है, 12 वर्ष छद्मस्थ काल है तथा 30 वर्ष केवली काल है। देखो, छद्मस्थ काल में कुमार काल और बाद में उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की, तो 12 वर्ष का ये जो छद्मस्थ काल का, ये मुनि की अपेक्षा मुनि अवस्था, 30 वर्ष केवली काल है। इस प्रकार तीनों कालों का जोड़ 72 वर्ष होता है। इस 72 वर्ष प्रमाण काल को 15 दिन और 8 महीना अधिक 75 वर्ष में से घटा देने पर, वो ब हुआ वर्ष में से घटा देने पर, वर्धमान जिनेन्द्र के मोक्ष जाने पर जितना चतुर्थ काल शेष रहता है उसका प्रमाण होता है। यानी उनके मोक्ष जाने पर इतना काल बाकी रहा चौथे काल का। इस काल में 66 दिन कम केवली काल अर्थात 29 वर्ष 9 महीना और 24 दिन के मिला देने पर चतुर्थ काल में 9 दिन और 6 महीना अधिक 33 वर्ष बाकी रहते हैं। इसी का विशेषार्थ और बताते हैं। देखो, नए वर्ष का प्रारंभ श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से होता है। आप इसको क्या कहेंगे? हाँ देवेंद्र भाई, ऊपर क्या लिखा? छावट्ठी दिवसूण केवली काले पक्षित्ते नव दिवस छम्मासी, नहीं उसके बाद होगा, नहीं ये तो विशेषार्थ में लिखे। हाँ विशेषार्थ, फिर पढ़ेंगे, फिर पूछेंगे। नए वर्ष का प्रारंभ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से होता है और भगवान महावीर की आयु 72 वर्ष प्रमाण थी। हम नया वर्ष का आयु प्रारंभ कहाँ से करते हैं? हाँ वो नहीं, युग का प्रारंभ कब हुआ था? युग का प्रारंभ यहाँ तो श्रावण कृष्ण लिखा है, तो अपना चातुर्मास कब से शुरू हो जाता है? आषाढ़ कृष्ण एक, आषाढ़ कृष्ण क्योंकि पूर्णिमा हो जाती है ना, और फिर हम तो आषाढ़ कहते हैं उसको, यहाँ हिंदी भाषिक श्रावण कृष्ण एकम कहते हैं। 15 दिन का नहीं पड़ता है, हर महीने में शुक्ल पक्ष दोनों के समान होते हैं, और अभी कृष्ण पक्ष है, अभी आज 14 है ना, ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, कल पूर्णिमा हो जाएगी, कौन से महीने की? माघ चल रहा है, और फिर हमारा माघ कृष्ण एकम कहेंगे हम, और हिंदी भाषिक उसको क्या कहेंगे? फाल्गुन कृष्ण एकम कहेंगे। 15 दिन का नहीं होता ऐसा, कृष्ण पक्ष में 1 महीने का, शुक्ल पक्ष दोनों का समान है, क्योंकि वो पूर्णिमा को महीने की अंतिम तिथि मानते हैं और फिर आगे वाला महीना शुरू हो जाता है। तो ये कृष्ण पक्ष में वो डिफरेंस आता है हमेशा। और यहां जो शुरू हुई थी, युग का प्रारंभ कहो या भगवान की जो वाणी कही हिरी थी उसकी बात यहां देखो, नए वर्ष का प्रारंभ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से होता है और भगवान महावीर की आयु 72 वर्ष प्रमाण थी। नया वर्ष है ना, यहाँ पर युग का प्रारंभ कहेंगे हम। देखो मैं बताऊंगी, ये पूरा पढ़ेंगे। जब महावीर भगवान स्वामी मोक्ष गए, तब चतुर्थ काल में 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन बाकी थे। अतः चतुर्थ काल में 75 वर्ष, यानी वो नया वर्ष कहाँ से लेना, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से लेना है, और उसमें कितने बाकी थे वो बात उन्होंने गिनाई है। अतः चतुर्थ काल में 75 वर्ष 8 मास और 15 दिन शेष रहने पर भगवान महावीर स्वामी गर्भ में आए, यह निश्चित होता है। इसमें से गर्भ से लेकर कुमार काल के 30 वर्ष, दीक्षा काल के 12 वर्ष, इस प्रकार 42 वर्ष कम कर देने पर चतुर्थ काल में 33 वर्ष 8 माह और 15 दिन शेष रहने पर भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। पर केवल ज्ञान प्राप्त होने के अनंतर ही धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं हुई, आपको सबको मालूम है ये। 66 दिन तक वाणी नहीं खेरी, क्योंकि 2 माह और 6 दिन तक गणधर के नहीं मिलने से भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खेरी, ये निमित्त का कथन है। ये तो हमने बहुत इस पर चर्चा भी किया। अतः 33 वर्ष 8 माह और 15 दिन में से 2 माह और 6 दिन के और भी कम कर देने पर चतुर्थ काल में 33 वर्ष 6 माह और 9 दिन बाकी रहने पर धर्म तीर्थ की उत्पत्ति हुई, ऐसा सिद्ध होता है। यानी उसमें से 66 दिन और कम करना, तब धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। केवल ज्ञान होते ही नहीं हुई, 66 दिन के बाद हुई, इसलिए वहां 66 दिन कम करके बोलेंगे कि तब उनके धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। शंका, केवली काल में से 66 दिन किस लिए कम किए गए? उनका केवली काल कितना है? तो जब से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ वहां से लेकर हम आगे मोक्ष जाने तक का केवली काल कहेंगे, तो उसमें से 66 दिन कम करके उनका तीर्थ काल कहेंगे उसको। समाधान, भगवान महावीर को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर भी 66 दिन तक धर्म तीर्थ की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए केवली काल में से 66 दिन कम किए गए। फिर शंका, केवल ज्ञान की उत्पत्ति के अनंतर 66 दिन तक दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति क्यों नहीं हुई? उसका समाधान, गणधर न होने से उतने दिन तक दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति नहीं हुई। फिर शंका, सौधर्म इंद्र ने केवल ज्ञान के प्राप्त होने के समय ही गणधर को क्यों नहीं उपस्थित किया? क्योंकि वो तो सब जानते हैं ना शिष्य भी, कि गणधर नहीं था, कि वो सौधर्म इंद्र के अवधि ज्ञान में आया, फिर वो वहां पर गया इंद्रभूति के पास, जो वैदिक ब्राह्मण थे, इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति आदि, फिर उनसे वो चर्चा की, उनको पूछा ये 5 अस्थि का है, 6 द्रव्य, 7 पदार्थ, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये क्या है? तो फिर उन्होंने बोले मैं तेरे गुरु से ही चर्चा करूंगा, तो इस बहाने उनको समोशरण में ले आए थे। तो कहते वो पहले क्यों नहीं उपस्थित कराया? समाधान, नहीं, क्योंकि काल लब्धि के बिना सौधर्म इंद्र गणधर को उपस्थित करने में असमर्थ था। उसमें उस समय गणधर को उपस्थित करने की शक्ति नहीं थी। तो जिस समय गणधर आया वो अपने काल लब्धि से आया कि नहीं आया? सब में लगाना ये, तो हम तो समझते नहीं। देखो, निमित्त की आधीन बात करने वाले लोग क्या कहते, देखो गणधर नहीं था इसलिए वाणी नहीं खेरी, गणधर आते ही वाणी खेरी, देखो निमित्त ने कार्य किया कि नहीं किया, तो इसलिए यहां पूछा है। तो गणधर को पहले क्यों नहीं लाया? तो कैसे लाता? क्योंकि वो वाणी का भी उस समय निश्चित था, गणधर आने का भी समय निश्चित था। शंका, जिसने अपने पादमूल में महाव्रत स्वीकार किया है, ऐसे पुरुष को छोड़कर अन्य के निमित्त से दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरती है? देखो बिल्कुल ये बात अपने धवला के 9वें पुस्तक में आई थी ये बात, देखो यहां फिर दोबारा आई है। जिन्होंने तीर्थंकर के सामने मुनि दीक्षा ली है वे ही उनके गणधर होते हैं। पूर्व से जो मुनि ऑलरेडी है, मुनिराज तो पहले से भी होंगे, जैसे महा पार्श्वनाथ के गणधर का शिष्य, नाम मालूम है जो वहां उपस्थित था, मुनि भूल गए परंतु सुना तो है, हाँ गोशाल मस्करी गोशाल ऑलरेडी मुनि थे। देखो जैसे समोचरण लगा है, जैसे श्रावक जाएंगे तो मुनिराज भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो वहां तो ऑलरेडी जो पहले से मुनि है वे भी वहां जाएंगे, और ये तो वैदिक ब्राह्मण था और वहां गया, फिर हमने देखा ना वो मानस तंभ देखकर मान गल गया, अंदर जाके उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की, और मुनि दीक्षा अंगीकार करके फिर उनके भी अंतरंग में मुनिपना भी प्रकट हो गया, और उसके साथ ही अंतर्मुहूर्त में उनके ये सारे रिद्धियां भी प्रकट हो गई, सभी रिद्धियां, एक केवल ज्ञान को छोड़कर बाकी सब उनके प्रकट हो गए, बुद्धि रिद्धि वगैरह कोष्ठ बुद्धि वगैरह जितनी कुछ है वो सब प्रकट हो गए। तो यहां जो कहते हैं देखो ना, ये शंका के रूप में इसको प्रस्तुत किया और उसमें नियम बताया है, ये मैं बताती हूँ क्योंकि ये बात मैंने प्रवचन में कभी कही थी, वो विमला बेन को भी आश्चर्य हुआ था, उन्होंने पूछा कहाँ लिखा है, धवला में मुझे याद है, क्यों, क्योंकि देवलाली में प्रवचन में मैंने इसको उद्धृत किया था और वहाँ ब्रह्मचारी विमला बेन आदि बैठती है ना, तो उन्होंने पूछा कहाँ लिखा है, तो मैंने बोला हमने धवला में इसको पढ़ा है, नौवे भाग में आई थी बातें, जिसमें ये सारे गणधरों की रिद्धियों का भी वर्णन आया था और समोचरण का भी कुछ वर्णन आया था, उसमें ये बात आई थी कि ये बात कंडीशन क्यों है कि जो पहले से ऑलरेडी मुनिराज है वे गणधर नहीं बनते। यहाँ क्या लिखा, ये शंकाकार के मुंह में प्रश्न उठाया है और वही सिद्धांत बताया, उसमें सिद्धांत बताकर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। देखो, जिसने अपने पाद मूल में महाव्रत स्वीकार किया है, अपने यानी अभी महावीर के लिए अपने यानी महावीर के पाद मूल में जिन्होंने मुनिव्रत धारण किया है, ऐसे पुरुष को छोड़कर अन्य के निमित्त से दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरती है, यानी मुनि अवस्था उन्होंने वहां जाकर वो दीक्षित हो गए महावीर के सामने, वही गंधर्व यानी जो जो गंधर्व बनेंगे वो वहां जाकर दीक्षित होने वाले होंगे। हाँ ये तो रूल है ऐसा, हाँ नौवे भाग में आया है, मुझे इसलिए याद है कि मैंने ये तो प्रवचन में भी बताया और उस पर उन्होंने प्रश्न भी किया है, इसलिए थोड़ा हाँ उनके समोषण में जाकर उन्होंने ये तो रूल ही बताया है उन्होंने, हाँ क्योंकि यह लिखा ना ऐसा क्यों पूछा है ना, यानी ये तो रूल हो जाता है, नियम बताया उन्होंने, समाधान ऐसा ही स्वभाव है। दौला में कितनी जगह लिखे स्वभाव या वस्तु का स्वरूप है वो किसी के प्रश्न के लिए देने के लिए कोई बंधा हुआ नहीं है, यह लिखा है, और स्वभाव दूसरों के द्वारा प्रश्न करने योग्य नहीं होता, क्योंकि यदि स्वभाव में भी प्रश्न होने लगे तो कोई व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी। बच्चों को बहुत आदत होती है ना वाई, या अमेरिका वाले तो वाई वाई करते रहते बच्चों और सब उनको समझाना पड़ता है, तो यहाँ भाई को बता रहे हैं है? स्वभाव किसी के प्रश्न करने योग्य नहीं होते। हाँ पांचवे काल का पहला दिन भी, इसीलिए युग का प्रारंभ भी उसी दिन होता है, ये जो एक काल समाप्त होकर दूसरा काल शुरू होता है ना, तो इस दिन में शुरू होता है। हाँ श्रावण कृष्ण लिखा है यहाँ पर हम आषाढ़ कृष्ण एकम लेंगे अपने हिसाब से, उसी दिन दिव्य ध्वनि खिरी थी ना। हाँ देखो ये हाँ उनके वो श्रावण कृष्ण कहेंगे, कार्तिक अमावस्या में तो उनका मोक्ष हुआ। अच्छा हाँ अश्विन अमावस्या कहते हैं, वो कार्तिक अमावस्या के दिन एक ही है, उसका नाम अलग अलग है, जिसको हम अश्विन की अमावस्या कहते हैं उसी को उत्तर हिंदुस्तानी कातक अमावस्या कहते हैं, देखो, अतएव कुछ कम 34 वर्ष प्रमाण चौथे काल के रहने पर तीर्थ की उत्पत्ति हुई यह सिद्ध हुआ। तीर्थ की उत्पत्ति यानी सबसे पहले दिव्य ध्वनि कब खिरी उसको तीर्थ की उत्पत्ति कहा। महावीर भगवान की अपेक्षा से ये कथन है तीर्थ की उत्पत्ति वाली, और पूरे अवसर पिणी में तीर्थ की उत्पत्ति तो फिर आदिनाथ भगवान को हम याद करेंगे, वो तो तीसरे काल के अंत में हुई थी। हुंडावसर पिणी में ये बात बनी ना, चौथे काल में नहीं हुए, वो तो चौथे के पहले तीसरे में ही हुए थे। कुछ अन्य आचार्य 5 दिन और 8 माह कम 72 वर्ष प्रमाण अर्थात 71 वर्ष और 3 माह और 25 दिन वर्धमान जिनेन्द्र की आयु थी ऐसा प्ररूपण करते हैं। उन आचार्यों के अभिप्रायानुसार गर्भस्थ काल, कुमार काल, छद्मस्थ काल और केवली काल का प्ररूपण करते हैं, यानी जो अन्य मत है उसकी भी बात यहां बताते हैं। वह इस प्रकार है, आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन कुंडपुर नगर के स्वामी नाथवंशी सिद्धार्थ नरेंद्र की, नरेंद्र ने राजा सिद्धार्थ राजा की त्रिशला देवी के गर्भ में आकर, त्रिशला लिखा त्रिशला चाहिए ना हिंदी, और वहां 9 माह 8 दिन रहकर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन रात्रि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के रहते हुए भगवान महावीर गर्भ से बाहर आए। यहां आषाढ़ शुक्ला षष्ठी से लेकर पूर्णिमा तक 10 दिन होते हैं, पुनः श्रावण माह से लेकर फाल्गुन माह तक 8 माह गर्भावस्था में व्यतीत करके चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को उत्पन्न हुए, इसलिए चैत्र माह के 28 दिन और प्राप्त होते हैं। इन 28 दिनों में पहले के 10 दिन मिला देने पर 8 दिन अधिक 1 माह होता है। ये सारा हिसाब किताब लगा रहे हैं, जैसे हम भी वो कैलकुलेशन करते थे, वो ऑब्स्टेट्रिक्स सीखते थे ना, गर्भ में कितने दिन बालक रहता है। इसे पूर्वोक्त 8 महीनों में मिला देने पर 9 माह और 8 दिन प्रमाण वर्धमान जिनेन्द्र का गर्भस्थ काल होता है, उसकी संदृष्टि 9 माह 8 दिन है। इस विषय की उपयोगी गाथाएं यहां दी जाती हैं, वो 21 से 24 तक की गाथाएं। सुरमहि दोच्चुदकप्पे भोगम दिव्वाणु भागमणु भूदो फुफुत्तरणामादो विमान दोजोचुदो संतो बाहत्तरिवासाणिय थोव विहीनानि लद्ध परमाहु आषाढ़ जोण पखे छठी ए जोणि मुयादो कुंडपुर पुर वरिसर सिद्धत्थ कत्यसनाह कुले तिसलाए देवी ए देवी सदसेव मानावे अच्छिथाणव मासे अठय दिवसे चैत सिय पखे तेरसिये रतिये जादुत्तर फगुणी एदु। सुर महिद उच्छद कप्पे, जो देवों द्वारा पूजा जाता था, जिसने अच्युत कल्प में दिव्य अनुभाग शक्ति से युक्त भोगों को भोगों का अनुभव किया, ऐसे महावीर जिनेन्द्र का जीव अच्युत यानी कितने नंबर का, आनत प्राणत आरण और अच्युत 16वें स्वर्ग। हाँ, कुछ कम 72 वर्ष की आयु पाकर पुष्पोत्तर नामक विमान से च्युत होकर, ये कल्प बताया है अच्युत नाम का 16वां स्वर्ग, उसमें तो कितने ही विमान है, उसमें से उनके विमान का नाम पुष्पोत्तर था। च्युत होकर, च्युत होना यानी वहां से मरकर नीचे जन्म लेना, तो नीचे आते हैं मध्यलोक में, तो उसको च्युत होना कहते हैं। च्युत होकर आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन कुंडपुर नगर के स्वामी सिद्धार्थ क्षत्रिय के घर यानी सिद्धार्थ राजा के यहाँ नाथ कुल में, उनके कुल का नाम है नाथ कुल, ऊपर लिखा था देखो नाह कुले तिसलाए देवी देवी सदस एव माणाए, यानी सैकड़ों देवियों से सेवित से, सैकड़ों देवियों से सेवमान त्रिशला देवी के गर्भ में आए और वहाँ 9 माह 8 दिन रहकर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के रात्रि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के रहते हुए भगवान का जन्म हुआ। इस प्रकार गर्भस्थित काल की प्रारूपना की, यानी वहाँ तो 72 वर्ष का और यहाँ 71 वर्ष 3 महीने और 25 दिन ऐसा कुछ का ना, ये डिफरेंस जो कुछ है वो उन्होंने बता दिया। अब आगे, अब कुमार काल की प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार है। चैत्र माह के 2 दिन वैशाख माह से लेकर 28 वर्ष तथा पुनः वैशाख माह से लेकर कार्तिक माह तक 7 माह कुमार रूप से व्यतीत करके अनंतर मार्गशीर्ष कृष्णादशमी के दिन भगवान महावीर ने जिन दीक्षा ली, इसलिए कुमार काल का प्रमाण 7 माह और 12 दिन अधिक 28 वर्ष होता है। आगे इस विषय की उपयोगी गाथाएं दी जाती है। पहले हमने 30 वर्ष देखा था गर्भ से लेकर, और यहाँ इसको कुमार काल अलग बताया, 25 और 26। मणुवत्तन सुहमतुलम देवकयम से विऊणवासाइम 28 सत्तय मासे दिवसे यबारसयम् आभिनिबोहिय बुद्धो छठेण यमगसी स बहुलाए दशमीये निखंतो सुरमहिदो निखमण पुच्छो। सात माह और 12 दिन से अधिक 28 वर्ष, 28 में कितने एक्स्ट्रा मिलाना उसकी बात है, तो उसमें तो पहले महीना और दिन बताएंगे ना, ऐसा नहीं कहते इतने महीने इतने दिन और इतने वर्ष, इतने महीने और दिनों से अधिक इतने वर्ष, 28 वर्ष में कितने महीने और दिन मिलाना वो बात है, बीच में अधिक शब्द लिखा है। अट्ठाईस वर्ष 7 माह और 12 दिन तक देवों के द्वारा किए गए मनुष्य संबंधी अनुपम सुख का सेवन करके, क्या कहते हैं, देवों के द्वारा किए गए मनुष्य सुख, यानी वो जो जन्म लेते हैं तो वो तो पहले मालूम है कि वहाँ तो अभिषेक के लिए पांडुशिला पर ले जाते हैं और दिव्य वस्त्र आभूषण आदि उनको पहराते हैं और वो स्वर्गों से आते हैं। तीर्थंकर का जो जीव है बाल्यावस्था से लाकर उनके जो लेकर उनके जो वस्त्र आभूषण आदि है वो स्वर्गों से आते हैं, स्वर्गों में भी वो जो मानस स्तंभ पाए जाते हैं सौधर्म ईशान आदि जो है, तो वो मानस स्तंभ और उसके पिटारे होते हैं, उसका भी वर्णन हमने वो भूगोल के शिविर में देखा था, नीचे नहीं होते ऐसे सांखल से ऐसे टंगे हुए होते हैं, हाँ, और उसमें उन पिटारों में विशिष्ट वो कौन सी दिशा में कौन से क्षेत्र के तीर्थंकरों का कहाँ पर पाया जाएगी, उनके वस्त्र और भूषण उसमें होते हैं और उसमें से वो देव लाकर यहाँ उनको भेंट करते हैं बालक को। इस हाँ हर के तीर्थंकरों के अलग अलग होते हैं, जैसे भरत क्षेत्र के कहाँ पर हो गए, ऐरावत के कहाँ पर हो गए आदि बातें। हाँ केवल वो पिटारों का ही कितना डिटेल वर्णन है उसमें। यहाँ क्या हुआ, देवों के द्वारा किए गए मनुष्य संबंधी अनुपम सुख का सेवन करके जो आभिनिबोधिक ज्ञान से प्रतिबुद्ध हुए और जिनकी दीक्षा संबंधी पूजा हुई, ऐसे देव पूजित वर्धमान जिनेन्द्र ने अभिनिबोधि ज्ञान से प्रतिबुद्ध हुए, क्यों कहा यहाँ पर, प्रतिबुद्ध बोधित बुद्ध प्रतिबुद्ध बोह्य बुद्ध वो मति ज्ञान तो शुरू से ही जन्म से ही थे ना, और जिनकी मन पर ज्ञान प्रकट होता है उनके, और जिनकी दीक्षा संबंधी पूजा हुई यानी दीक्षा कल्याणक मनाया ना देवों ने उनके, ऐसे देव पूजित वर्धमान जिनेन्द्र ने षष्ठोपवास के साथ मार्गशीर्ष कृष्णादशमी के दिन जिन दीक्षा ली, षष्ठोपवास है ने छह उपवास है ने कितने षष्ठोपवास कैसे कहेंगे हम, हाँ दो भोजन यानी छह भोजन का त्याग हो जाता है ना उसमें, कि छह दिन पूरे लेना वो छह क्योंकि मासोपवास तो मास को महीने के उपवास को कहते हैं, षष्ठोपवास किसको, प्रोषधोपवास में तो चार भोजन का त्याग हो जाता है, पारणा का दिन का एक और धारणा का दिन का एक,
छह पूरे दिन लेना है।
मार्ग शीर्ष कृष्णादशमी के दिन जिन्ह दीक्षा ली, इस प्रकार कुमार काल की प्ररूपणा की। अब छद्यस्त हुआ, छद्मस्त काल का कथन, आवि निबोधिक ज्ञान से प्रतिबुद्ध हुए, मन परे ज्ञान प्रकट हुआ है, मगर मति ज्ञान करके जो अभिनवोदिक ज्ञान से प्रतिबद्ध हुए, अभिनवोदिक ज्ञान से तो पहले से ही थे ना प्रतिबुद्ध, क्या नीचे लिखा है क्या उसमें ऊपर प्रतिबद्ध हुए ऐसा, दो में उद्रुते में धवला आरा प्रति, अभी हम जो नीचे का पढ़ेंगे, अब छद्मस्त वो म किया बराबर, छद्मस्त काल का कथन करते हैं वह इस प्रकार। देखो वो तो अभी तक तो छद्मस्त ही रहेंगे ना जब तक केवल ज्ञान नहीं है अनादि से, परंतु यहाँ मुनि दीक्षा लेने के बाद का जो काल है उसको यहाँ छद्मस्त काल कहा है। मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी से लेकर या दशमी के दिन तक तो वो उस दिन जिन दीक्षा ली तो एकादशी से यहाँ शुरू किया, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर्यंत 20 दिन की दशमी के आगे गिनना है ना, पुनः पौष माह से लेकर 12 वर्ष, पुनः उसी पौष माह से लेकर 4 माह तथा वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तक 25 दिन छद्मस्त, यहाँ भी दुरुस्त करना, छद्मस्त अवस्था रूप से व्यतीत करके वैशाख शुक्ला दशमी के दिन, वैशाख शुक्ला दशमी को हुआ था ना केवल ज्ञान, ये गर्भ में कौन से दिन आए थे याद है, अभी हमने आषाढ़ शुक्ल षष्ठी, जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, हाँ और फिर मुनि दीक्षा मार्गशीर शुक्ल दशमी अभी हमने देखा था ना, और केवल ज्ञान अभी पढ़ा, वैशाख शुक्ल दशमी, वैशाख शुक्ल दशमी के दिन रुजुकुला नदी के किनारे जुम्बिक ग्राम के बाहर षष्ठोपवास के साथ शिलापट्ट के ऊपर, शिलापट्ट ने शिला आतापन योग से स्थित, योग धारण करके थे उसमें अलग अलग होते हैं, आतापन योग की बात है यहाँ पर, भगवान महावीर ने अपराह्न काल में पाद प्रमाण छाया के रहने पर केवल ज्ञान उत्पन्न किया। हाँ, दोपहर में, अपराह्न ने शाम, अपराह्न मध्यान्ह और अपराह्न, दोपहर यानी 12 के बाद की बात है ना, इवनिंग के टूअर्स इवनिंग, दोपहर पाद, दो विलस्सी का एक पाद होता है ना, ऐसा इतनी छाया शेष रहने पर,
शाम होगी तो छाया लंबी जाएगी।
हाँ
हाँ,
यानी दोपहर अपराह्न ने मध्यान्ह के बाद वाला काल। हाँ, ये पहले तो ये जो कितनी छाया बाकी है कितनी है ऐसे ही नापते थे। हाँ, हम बचपन में सीखे थे, ये मुनिराजों के पास तो घड़ी नहीं होती थी ना, तो सुबह उठते कि ऐसा करते थे और फिर वो कितनी लंबी छाया आती कि उसका माप होता था, वो मुझे पूरा याद था, अभी मैं भूल गई, बचपन में बहुत याद किया था ये सब, यानी कैसे टाइम गिनना, उसके शैडो के अकॉर्डिंगली टाइम कैसे गिनना। आतापन योग जैसे
योग
अनेक प्रकार के होते हैं, आतापन योग है। हाँ, वो कल निकाल के देखेंगे योग, इसमें से निकालना पड़ेगा, वो हमने देखा था ना चुत चावी, तो उसकी उसमें ये आया था आतापन योग वगैरह, चुत चावी तो तक तो भक्त उसमें भी आया था, समय ज्ञान चंद्रिका में भी शायद देखा था हमने, किस प्रकार से पूर्व में शरीर त्याग किया है, कौन से योग से वगैरह, उसकी बात आई थी उसमें, चुत चावी तो तक तो उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से दिए थे योग अलग अलग कौन से। आतापन योग से सिद्ध भगवान महावीर ने अपराह्न काल में पाद प्रमाण छाये के रहने पर केवल ज्ञान उत्पन्न किया, इसलिए छद्मस्थ काल का प्रमाण यानी मुनि अवस्था का प्रमाण 5 माह और 15 दिन अधिक यानी इससे अधिक 12 वर्ष होता है। हम तो स्थूल रूप से कह रहे हैं 12 वर्ष है, ये 30 वर्ष है, इस तरह से। अब इस विषय में उपयोगी गाथाएं दी जाती हैं। ऊपर जो गाथा है 27, 28, 29 एक साथ पढ़ेंगे हमें तीनों। गमय छदुमत्थतम बारसवासाणि पंचमासेय पन्नरसाणि दिनानि तिरदन शुद्धो महावीरो उजुकूलन नदी तीरे जम्भीय गामे बहिं शिलावट्टे छठेणादावेन्ते अवरन्ने पादछायाये वैसाह जोण्न पक्खे दशमी खवय सेडी मारूढो हन्तूण घायिकम्मं केवलनाणं समावन्नो। 12 वर्ष 5 माह और 15 दिन, आपको ये इस ऑर्डर से सुनने की आदत है ना, पहले तो कितने माह और दिन से अधिक ऐसा कहा था, अब ये लगातार बता रहे 12 वर्ष 5 माह और 15 दिन पर्यंत छद्मस्थ अवस्था को बिताकर यानी मुनि अवस्था को बिताकर रत्नत्रय से शुद्ध और जुरुम्बिक ग्राम के बाहर, जुरुम्बिक नाम का कोई गांव है उसके बाहर रुजुकुला नदी के किनारे शिला पट्ट के ऊपर, कोई वहां शिला होगी उसके ऊपर षष्ठोपवास के साथ 6 उपवास के साथ आतापन योग करते हुए, ये प्रतिमा योग भी एक बात आती है ना, जैसे बाहुबली ने प्रतिमा योग धारण किया था, तो बस गुणि दीक्षा ली और वहीं पर प्रतिमा योग ही धारण किया, तो वहां से हिले ही नहीं, उन्होंने ऐसे ही व्रत अंगीकार किया था। ये आतापन योग करते हुए महावीर जिनेन्द्र ने अपराह्न काल में पाद प्रमाण छाया के रहते हुए वैशाख शुक्ल दशमी के दिन क्षपक श्रेणी पर आरोहण किया और 4 घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, इस प्रकार छद्मस्थ काल का प्ररूपण किया। अब केवली काल को कहते हैं, वह इस प्रकार है। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन, पुनः ज्येष्ठ मास से लेकर 29 वर्ष, पुनः उसी ज्येष्ठ माह से लेकर आसोज तक 5 माह तथा कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक 14 दिन। ये कार्तिक माह के कृष्ण, ये नहीं, वो पहले लिया ना, जिसको हम अश्विन कहते हैं, अश्विन कृष्ण कहते हैं, वहाँ यहाँ कार्तिक कृष्ण का केवल ज्ञान के साथ इस आर्यावर्त में व्यतीत करके, आर्यावर्त यानी इस देश में व्यतीत करके वर्धमान जिन मोक्ष को प्राप्त हुए। अमावस के दिन सकल देव और इंद्रों ने निर्वाण पूजा की। देखो पहले शब्द आया था वो जब उन्हें मुनि दीक्षा ली थी, पूजा की थी, वहां निक्कमण ऐसा शब्द आया था, निक्कमण पूज्यो 26वीं गाथा में, सुर महिदो निक्कमण पूज्यो। निष्क्रमण का अर्थ क्या होता है? मुनि दीक्षा को हम निष्क्रमण कहते, निष्क्रमण महोत्सव भी कहते, दीक्षा कल्याणक के लिए निष्क्रमण महोत्सव भी कहते, और यहाँ निर्वाण पूजा की बात है, इसलिए अमावस का दिन भी इसी पूर्वोक्त केवली काल में मिला देने पर कार्तिक माह के 14 दिनों के स्थान में 15 दिन हो जाते हैं। इसलिए इस केवली काल का प्रमाण 29 वर्ष 5 माह और 20 दिन होता है। अब इस विषय में उपयोगी गाथाएं दी जाती हैं। वासानुनतिसं पंचयमासे अवीस दिवसेय चहुविह अगारेहिय बारह गणे ही विहरिता पच्छा पावाणयरे कत्तिय मासस्य किन्न चोद्दसिये सादिये रत्तिये सेसरयं छेत्तुनिवावो। 29 वर्ष 5 माह और 20 दिन तक ऋषि, मुनि, यति और अनगार, इन 4 प्रकार के मुनियों और 12 गणों अर्थात सभाओं के साथ विहार करके पश्चात भगवान महावीर ने पावानगर में, पावापुरी कहते ना, पावानगर में कार्तिक माह की कृष्णा चतुर्दशी को स्वाति नक्षत्र के रहते हुए इस बात ही हुआ। रात्रि के समय शेष अघाती कर्म रूपी रज को छेद कर निर्वाण को प्राप्त किया, इस प्रकार केवली काल का प्ररूपण किया। अब अधिक बात हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। विनोद भाई।